लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के लिए पोप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। देवदूत प्रार्थना के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने अपने स्वास्थ्य के कारण मुश्किल वक्त पर चिंतन करते हुए अस्पतालों एवं देखभाल केंद्रों में आशा के चमकते चिन्हों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने देवदूत प्रार्थना के पूर्व संदेश देने की अपनी परंपरा को जमेली अस्पताल में रहते हुए भी जारी रखा है। उनके संदेश को वैटिकन प्रेस कार्यालय ने रविवार को प्रकाशित किया। सभी विश्वासों को संबोधित करते हुए अपने संदेश में संत पापा लिखते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज चालीसा काल के दूसरे रविवार को सुसमाचार पाठ हमें यीशु के रूपांतरण के बारे बतलाता है। पेत्रुस योहन और याकूब के साथ एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद यीशु प्रार्थना में लीन हो गए और प्रकाश की तरह चमकने लगे। इस तरह उन्होंने शिष्यों को दिखलाया कि उनके बीच यीशु के कार्य के पीछे उनके असीम प्रेम की किरण छिपी है। संत पापा ने कहा, मैं इन विचारों को ऐसे समय में आपके साथ साझा कर रहा हूं जब मैं परीक्षा के दौ से गुजर रहा हूं, और मैं उन अनेक भाइयों एवं बहनों के साथ हूं जो इस समय मेरी तरह बीमार एवं कमजोर हैं। हमारे शरीर कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें प्रेम करने, प्रार्थना करने, खुद को समर्पित करने, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखने और आशा की किरण जगाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की उदास सेवा की सराहना करते हुए कहा, इस अर्थ में अस्पतालों और देखभाल केंद्रों में कितनी रोशनी चमकती है। प्रेमपूर्ण देखभाल से कमरे, गलियारे, क्लिनिक, जहां सबसे विनम्र सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कितनी रोशनी होती है। इसलिए मैं आज आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ प्रभु की स्तुति करें, जो हमें कभी नहीं छोड़ते और जो दुख के समय में ऐसे लोगों को हमारे पास रखते हैं जो अपने प्रेम की किरण को प्रतिबिंबित करते हैं। तत्पश्चात प्रार्थनाओं एवं सामिप्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संत पापा ने कहा, मैं आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं और उन सभी को शुक्रिया अदा करता हूं जो इतने समर्पण के साथ मेरी सहायता करते हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित कर कहा, मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनमें से कुछ आज यहां जेमेली में निकटता के संकेत के रूप में आए हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। पोप आपसे प्यार करते हैं और आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद संत पापा ने युद्धग्रस्त देशों के पीड़ित लोगों की याद की तथा उनके लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, विशेषकर युद्ध से पीड़ित देशों के लिए, पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए। संत पापा ने अपने संदेश में कलीसिया की भी याद की। उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, और आइए हम कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें, जिससे हाल ही में आयोजित धर्म सभा में की गई आत्मपरक को ठोस रूप देने की आवश्यकता है। मैं धर्म सभा के महासचिव को धन्यवाद देता हूं, जो आने वाले 3 वर्षों में इस कार्य में स्थानीय कलीसियाओं का साथ देंगे। और अंत में कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा, कुंवारी मरियम आपको सुरक्षित रखें और उनकी तरह मसीह के प्रकाश और शांति के वाहक बनने में आपकी सहायता करें। पोप फ्रांसिस का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं विभिन्न परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करने के पोप के आह्वान का प्रत्युत्तर देते हुए रविवार शाम को भी संत पेत्रुस महागिर जगह के प्रांगण में रोजरी माला विनती की गई। प्रार्थना का संचालन परमधम पीठे कलीसियाई अकादमी के अध्यक्ष मोनसिन्योर सल्वातोरे पिनाक्यो ने की।
Dio vieni a salvarmi,
Signore vieni presto al mio aiuto.
उन्होंने लोगों के बीच शांति, पीड़ा से मुक्ति और विश्वासों के बीच एकता के लिए प्रार्थना करने हेतु पोप की इच्छा अनुसार विश्वासों को रोजरी माला विनती करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा,
Anche oggi da questa piazza che si fa voce nel mondo ci uniamo nella comune preghiera per la pronta guarigione di Papa Francesco.
आज भी इस प्रांगण से जो दुनिया की आवाज है, हम सभी ईश प्रजा के साथ मिलकर पोप फ्रांसिस के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु जमा हुए हैं। हम हर एक व्यक्ति के लिए पोप की चिंता को आवाज देना चाहते हैं। आइए हम लोगों के बीच शांति, पीड़ा से राहत और विश्वासों की एकता के लिए प्रार्थना करें।
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Pope Francis 14 फरवरी से ही अस्पताल में भर्ती हैं और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने देवदूत प्रार्थना के लिए संत पाप फ्रांसिस का संदेश एवं पोप के स्वास्थ्य लाभ के लिए विनती को सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने रविवार की सुबह पवित्र मिसा के बाद प्रार्थना करते हुए संत पापा फ्रांसिस की एक तस्वीर जारी की। 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह पहली तस्वीर है। संत पापा फ्रांसिस की चिकित्सीय स्थिति स्थिर बनी हुई है और उनकी श्वसन चिकित्सा और फिजियोथेरेपी जारी है। संत पापा फ्रांसिस की तस्वीर उनके पीछे से ली गई है, जिसमें वे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने कैसक और स्टोल पहना हुआ है। तस्वीर में उन्हें अस्पताल की 10वीं मंजिल पर चैपल की वेदी पर क्रूस को देखते हुए दिखाया गया है, जहां वे हर दिन प्रार्थना करने जाते हैं। उनकी चिकित्सा स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 14 फरवरी को रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती होने के बाद संत पापा फ्रांसिस की यह पहली तस्वीर है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने रविवार शाम 16 मार्च को तस्वीर वितरित की। पिछले कई दिनों से पत्रकार और आम जनता संत पापा की एक तस्वीर की मांग कर रही थी और वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम में संत पापा फ्रांसिस ने उन परिवारों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की जिन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया के कोकानी शहर में लगी आग में अपने प्रियजनों, ज्यादातर युवा लोगों को खो दिया। संत पापा फ्रांसिस ने उत्तरी मैसेडोनिया के कोकानी में एक नाइट क्लब में रात भर लगी दुखद आग के बाद अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया। इस दुर्घटना में 59 लोग मारे गए और 155 लोग घायल हो गए। कोकानी के एक नाइट क्लब में 1500 लोगों की मौजूदगी वाले एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सुबह करीब 3 बजे आग लग गई। आग लगने की सबसे अधिक संभावना स्टेज पर की गई आतिशबाजी से लगी। कार्यक्रम के आयोजकों और आयोजन स्थल के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकांश पीड़ित 14 से 27 वर्ष की आयु के थे और संत पापा फ्रांसिस ने आधिकारिक तौर पर कलीसिया की धर्म सभा यात्रा में एक नए चरण की शुरुआत की है, जिसमें एक संगत प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, जिसका समापन 2028 में कलीसियाई सभा में होगा। धर्म सभा के महासचिव कार्डिनल मारियो ग्रेच ने धर्म सभा के परिणामों के कार्यान्वयन के साथ साथ 3 साल की प्रक्रिया की परिणति के रूप में अक्टूबर 2028 में वाटिकन में एक विशेष पोस्ट सिनोडल इक्लेसियल असेंबली के आयोजन की घोषणा की है। पूर्वी कैथोलिक कलीसियाओं के प्राधिधर्माध्यक्षों, महाधर्माध्यक्षों के साथ साथ सभी धर्माध्यक्षों को संबोधित एक पत्र में कार्डिनल ग्रेच ने स्पष्ट किया कि यह सभा एक नई धर्म सभा नहीं होगी। यह प्रक्रिया 3 साल की धर्म सभा के कार्यान्वयन चरण को संदर्भित करती है, जिसका विषय है धर्म सभा कलीसिया के लिए संचार, भागीदारी और मिशन, जो अक्टूबर 2024 में समाप्त हुआ। जैसा कि संत पापा ने अपने समापन पर स्पष्ट किया था कि 16वीं महासभा का अंतिम दस्तावेज पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साधारण मजिस्टेरियम का हिस्सा है और इसी तरह इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। कार्डिनल ग्रेच ने समझाया, इसका मतलब है कि स्थानीय कलीसियाओं और कलीसियाओं के समूहों को विवेक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से दस्तावेज के दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कार्डिनल ग्रेच ने धर्म सभा के कार्यान्वयन चरण के लिए संगत प्रक्रिया के चरणों को रेखांकित किया। मई में होने वाली प्रक्रिया की घोषणा, इसके कार्यान्वयन का विवरण देने के लिए एक विशिष्ट दस्तावेज का प्रकाशन और 24 से 26 अक्टूबर को निर्धारित धर्म सभा टीमों और सहभागी निकायों की जयंती समारोह। कार्डिनल ग्रेच का पत्र संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के निमंत्रण के साथ समाप्त होता है। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हौती विद्रोहियों को निशाना बनाकर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। यह ट्रंप प्रशासन के तहत समूह के खिलाफ पहला सैन्य अभियान है। रिपोर्टों के अनुसार रविवार दोपहर तक हमलों में मरने वालों की संख्या 31 हो गई थी, जबकि कम से कम 101 लोग घायल हो गए। राजधानी सन्ना, उत्तरी प्रांत सादा, जो हौतियों का गढ़ है, सहित कई स्थानों पर हताहतों की संख्या दर्ज की गई। हम लोग ने सना में अल्फ जर्राफ और शोआब जैसे आवासीय इलाकों के साथ साथ उत्तरी सादा में भी हमला किया। ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में हौतियों को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में फिर से नामित किया, सोशल मीडिया पर कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना और नौवाहन स्वतंत्रता को बहाल करना है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों के ठिकानों, उनके नेताओं और मिसाइल रक्षा को अमेरिकी नौपरिवहन और नौसेना की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निशाना बनाया गया है। उधर यमन के ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने शनिवार से शुरू हुए और रात भर जारी रहे अमेरिकी हमलों के जवाब में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत पर दूसरे हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने इस नए हमले की पुष्टि नहीं की है, जो कल लाल सागर में ट्रूमैन विमान वाहक पोत पर हुए हमले के बाद हुआ है। मध्य पूर्व में एक नया मोर्चा खुलने का वास्तविक खतरा है। पिछले शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन की राजधानी सना से शुरू करते हुए बड़े पैमाने पर छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 53 लोगों की मौत हो गई और 98 अन्य घायल हो गए, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। जवाबी कार्यवाही में हौती विद्रोहियों ने लाल सागर में व्यापारिक जहाज की सुरक्षा के लिए तैनात अमेरिकी विमान वाहक पोत ट्रूमैन पर कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से हमला किया। विद्रोही नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने टेलीविजन पर दिए भाषण में कहा, जब तक अमेरिकी अपनी आक्रामकता जारी रखेंगे तब तक उन पर नौवहन प्रतिबंध रहेगा। हमारा निर्णय केवल इसराइली दुश्मन के लिए था, लेकिन अब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी छापे फिर से तेज हो गए हैं तथा पश्चिमी यमनी क्षेत्र होदेदा में एक फैक्ट्री और गैलेक्सी लीडर जहाज के कॉकपिट को भी निशाना बनाया गया है। यह जहाज एक साल पहले विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह एक सैन्य आक्रमण है जो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह ईरान की आधिकारिक टिप्पणी है जो संभवतः अमेरिकी संदेश का मुख्य प्राप्त करता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।